एहसान लेक्चर नंबर 845 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य शुद्धात्मने
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोए सौवसाहूणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सौवसिद्धे दुवमचलमनोवमं गदिं पते उच्छामि समयपाहुड मिणमो
यह समय सार। उसके बाद आचार्य अमृतचंद्र ने जो परिशिष्ट लिखा है उसमें 47 शक्तियों में से हम प्रभुत्व शक्ति को देख रहे हैं और उस प्रभुत्व शक्ति को देखते हुए पेज नंबर 49 पर हम आए हैं। देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर समय सार में जो शक्तियां हैं वह सम्यक रूप से परिणमित हो रही है ऐसे शक्तियों की बात चल रही है, एक बात। दूसरी बात कि आत्मा में जो अनेक गुण हैं तो एक गुण का रूप दूसरे गुण में है, ख्याल में है? ये बात ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे तो हमें कोई बात में दिक्कत नहीं आएगी। देखो हम ये प्रश्न जो है ना 49 पेज पर ऊपर पहला उधर देखते हैं, पण आओ समझावामा तो केटलो बधो वक्त जाए। अच्छा समझवामा यानी जो बात पहले चल रही थी कि जो उत्पाद होता है उस उत्पाद को पूर्व पर्याय की व्यय की भी अपेक्षा नहीं है, ये बात हमने देखी थी ना। तो कहते हैं कि आओ समझवामा तो केटलो बधो वक्त जाए, अरे संसार ना भणतर पाछळ केटलो वक्त काढ़े छे, वळी विदेश मां भणवा जाए ने लाखों रुपया नो खर्च करे छे, पण आ अलौकिक भणतर शू काम आवे संसार वधारवा सिवाय काई काम न आवे, माटे आ तत्वज्ञान नो अभ्यास क्रोड उपाय करीने पन करवो जोइए। क्या कहा? तत्वज्ञान नो अभ्यास कैसा? एक उपाय दो उपाय नहीं, करोड़ उपाय भी करें लेकिन यह तत्व का अभ्यास को छोड़े नहीं, ये बात कह रहे। चढ़ाड़ा में कहूं छे ने कोटि उपाय बनाय भव्यता को उर आनो। स्वामी कार्तिकेय अनिप्रेक्षा नामना ग्रंथ में 321, 322 and 323 श्री कार्तिकेय स्वामी कहूं छे के सर्वज्ञ देवे जे जीव ने जन्म मरण सुख दुख आदि जे देश में जे काले जे विधि थी थवानु नियत जाइनु छे ते जीव ने, देखो यहाँ द्रव्य हो गया, ते देश मां यानी देश यानी उस प्रदेश में समझना, या अमेरिका हिंदुस्तान ऐसा नहीं, वो क्षेत्र हो गया, ते काले काल हो गया, ते विधि थी, ये विधि में किसको लेना नलिन भाई जोर से, हाँ निमित्त से, ते थाय छे। अभी उस प्रोसेस से भी कहेंगे तो प्रोसेस में भी निमित्त आता है लेकिन निमित्त कहने से तो अच्छा है,
निमित्त भी लेना और कौन से पूर्व पर्याय का अभाव पूर्वक
पूरे प्रोसेस जो है
पर्याय की श्रृंखला पूरी ले सकते हैं।
तेमा एटले आ बधुं थवामां इंद्र के जिनेन्द्र कोई काई फेरफार करवा समर्थ नथी।
अपने देश में का अर्थ क्या किया?
क्षेत्र में,
यानी परिक्षेत्र की बात ली ना।
हाँ जी,
परिक्षेत्र की बात है ना।
आपको कुछ कहने?
नहीं नहीं, आपने कुछ इंडिया या अमेरिका नहीं ऐसा कुछ कहा।
हाँ, परिक्षेत्र क्या भाई? जिस क्षेत्र में जहाँ मरण होना है वही होगा। हाँ, उसी हाँ, जगह पर होगा।
हाँ।
जैसा हम कहते ना कि मैंने बोला था कि आप मोटर में मत जाना, मैंने बोला था प्लेन में मत जाना। अरे वो जैसा जाना है वैसा ही जाएगा, जहाँ मरना है वहीं। अभी उसके नीचे से जमीन से लेकर 1000 फुट के ऊपर कहीं मरण होता हो, 30,000 फुट पे मरण होना है, होगा। ये डॉक्टर के पास नहीं जाना था, उस डॉक्टर के पास जाना था। अरे ऐसा थोड़ी है, जो निमित्त होगा वही होगा बस।
अकेले मरण की बात नहीं, हर एक घटना जो
ये
है,
तो एक हाँ। अपने लौकिक में विशेष रूप से इसके ऊपर बहुत माथाकुट चलती है, यानी एडवाइस भी होता है ये वगैरह वगैरह, इसलिए उसकी बात कर रहा हूँ।
यानी जन्म से लेकर मरण तक के जो कोई घटना, एक एक घटना, छोटी में छोटी हो या बड़ी में बड़ी हो, तो वो सब उसमें सब लगाना है, सब कुछ निश्चित है।
उसमें ये भी लगाना हो, जो खाना मिलना है वही मिलेगा। हाँ, वो भी होता है,
जो मिलना है और जब ही मिलना है। हाँ। कभी कभी हम बनाते हैं ना मेहमान के लिए पूरा खाना बनाते, फिर फोन आ जाता है नहीं आ सकते, तो समझना कि वो खाना जो बना था वो उनके पेट में नहीं जाने वाला था।
हाँ। वो सारा का सारा हमारे पेट में जाना था। अभी बनी बात ऐसी, हमारे यहाँ मेहमान आने वाले थे, आए नहीं, 6 लोगों का खाना हमने दोनों ने हजम किया,
खाली पीली अपना एक क्लास छोड़ गया,
छुट्टी दी थी। चलो ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ते विधि थी ते था य ज छे तेमा इंद्र के जिनेन्द्र कोई काई फेरफार करवा समर्थ नथी। आ प्रमाणे जे ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि हमें कार्तिकीय, अभी जो हम पुस्तक पढ़ रहे कार्तिकीय अनुप्रेक्षा, उसमें और डिटेल में बात करेंगे। आ प्रमाणे जे निश्चय थी सर्व द्रव्यो ने सर्व पर्यायो ने जाने छे ते शुद्ध सम्यक दृष्टि छे, अने जे शंका करे छे ते कुदृष्टि अर्थात मिथ्या दृष्टि छे। आहा, दरेक द्रव्यनी दरेक गुणनी जे काले जे पर्याय थवा योग्य होय ते काले तेज पर्याय उत्पन्न थाय छे, काय पर्याय में भी अंतर नहीं होगा। एम यथार्थ जाननारनु लक्ष्य पर्याय ऊपर न रहता त्रिकाळी द्रव्य स्वभाव ऊपर जाय छे, अने एज स्वभाव दृष्टिनो सम्यक पुरुषार्थ छे। ऊपर बात आई थी ना, पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ क्या रह गया, तो ये पुरुषार्थ की बात बताई। आ रीते क्रमबद्ध पर्याय नो निर्णय करवामा भेगो पुरुषार्थ आवी जाय छे, माटे क्रमबद्ध मानवाती पुरुषार्थ उड़ी जाय छे एवी शंका करवी योग्य नथी। भाई नियत क्रम छोड़ी ने कोई प्रकारे एटले निमित्तादि वड़े पर्याय यथेच आगी पाछी थवानु तू माने, पन ए तो मिथ्या दर्शन छे, ए तारी एवी चेष्टा मिथ्या पुरुषार्थ मिथ्या विकल्प सिवाय काई नथी। प्रश्न, हा पन प्रवचन सारमा नए प्रकरण मा कारणे अने अकारणे बन्ने नु विधान छे, तेथी एकांते बधु क्रम नियमित क्रमबद्ध मानवू क्रमनियत क्रमबद्ध मानवू योग्य नथी। उत्तर, प्रवचन सारमा 47:9 नो अधिकार छे, तेमा कारणे अने अकारणे नी वात आवे छे, त्यां 30मा कारणे नी कथन करता कह्यू छे के आत्मद्रव्य काल ने जेनी सिद्धि समय पर आधार राखे छे एवू छे। उनाळाना दिवस अनुसार पाकता आम्रफळनी माफक, यानी जो जिस समय होना है वैसा होगा ऐसी वहां पर बात की है। अने मतलब के जे काळे जे पर्याय थवानी होय ते काळे ते थाय एनु नाम काळ नय छे। वळी त्यां 31 मां અકાળ નયની વર્ણન કરતા અકાળ નય થી વર્ણન કરતા કહ્યું છે કે આત્મદ્રવ્ય ઉપર ભી આત્મદ્રવ્ય કહા, અકાળ નય જેની સિદ્ધિ સમય પર આધાર રાખતી નથી એવું છે। કૃત્રિમ ગરમીથી પકવવામાં આવતા આમ્રફળની માફક, અહીં બંને કાળને અને અકાળને એ જ કાર્ય પ્રતિ એકજ કાર્ય પ્રતિ પોત પોતાની વિવક્ષા રજૂ કરે છે। જેમ કાળનેમાં કાળની વિવક્ષા છે તેમ અકાળને તે જ કાર્ય પ્રતિ અન્ય હેતુઓ સ્વભાવ પુરુષાર્થ નિયત અને નિમિત્તની વિવક્ષા દર્શાવે છે। એ ક્યાં કહેના ચાહતે હૈ દેખો દેખો, पहले तो काल और अकाल का अर्थ समझना। अकाल यानी कभी भी मन में आवे ऐसा अर्थ नहीं लेना है। जैसे ऐसी बात नहीं है,
नहीं, सुनना, बता दो।
देखो पहले तो ये समझना कि जैसे हमने ये नक्की किया था हम हमारे बिल्डिंग में जैन है तो हमारे आसपास के सारे अजैन है, ये बात जैसी होगी। वैसे काल और अकाल इसमें भी इसी तरह से लगाना है। वो कैसा लगाना है कि कोई भी कार्य होता है या जब जब कार्य होता है तब वहाँ क्या होते हैं, पांच समवाय निश्चित रूप से होते हैं, षट कारक वगैरह वगैरह सब। अभी उसको छोड़ो, उत्पाद व्यधुणत होता है वो सब बात अपने को सोचनी नहीं। अभी तो पांच समवाय के आधार से हम लेंगे तो पांच समवाय के नाम जानना आवश्यक है। हाँ, तो पांच समवाय के नाम कौन बताएगा? प्रेरणा बेन बताएगी। हाँ बोलो बेन। स्वभाव पुरुषार्थ नियत निमित्त, दो हो गया बेन, दो बार हो गया, भवितव्य होनहार कुछ भी कहो।
उन्होंने नियत कहा
हाँ
और निमित्त कहा।
देखो देखो स्वभाव पुरुषार्थ नियत, अच्छा नियत
बराबर, ये नियत उन्होंने होनहार के लिए कहा।
अच्छा चलो नियत ये
होनहार
नहीं आता
है उसको। हाँ
नियत ये शब्द नहीं आता है ऐसा मैं कहता हूँ। होनहार कहो या भवितव्य कहो, इसलिए मैं भी फंस गया। चलो कोई बात नहीं, काल लब्धि कहना हो।
यहाँ लिखा है ना,
क्या लिखा है?
नियत लिखा है इसलिए उन्होंने नियत कहा।
अच्छा यहाँ लिखा है, अच्छा अभी वो जाने दो, हम अपनी बात देखेंगे। तो अभी जब हम ये पांच अभी क्या कहेंगे, ये निमित्त मिला ना इसलिए उसको ऐसा खोटी संगत हुई, यानी उसकी खोटी आदतें लगी, तो हम निमित्त ऊपर आरोप करते हैं। वैसे हर समवाय को मुख्य करके कथन करना ऐसा कर सकते हैं ना कोई भी बात में। वैसे यहाँ कहते काल नय की अपेक्षा से जब हम बताएंगे तब वो काल नय का कथन होगा, और अन्य किसी समवाय की अपेक्षा से कथन करेंगे तो वो अकाल नय हुआ। ख्याल में आया ना अभी, जैसा जैन अजैन वैसे काल अकाल। तो हम लौकिक में अकाल यानी क्या, अरे क्या करें, अभी 22 साल का लड़का था, अभी शादी होनी थी उसकी, लड़की भी पक्की कर रहे थे, अच्छा हुआ नहीं किया, अरे जल्दी मर गया, अकाल ही मर गया। तो वो अकाल वाली बात यहाँ नहीं है। अभी आपने किसी ने अभी बताया था ना अकाल भी निश्चित रूप से होता है करके, हाँ यानी हम कहेंगे वो अकाल हो गया लेकिन वो जो होना था वो निश्चित ही था, ये बात सही है।
अकाल में हम काल को गौण करके अन्य समवाय को मुख्य कर रहे हैं, वही काल है। हाँ, वही
वो
काल
क्रमबद्ध था।
हाँ, क्रमबद्ध में वही है।
था, ऐसा समझ लेना।
नए क्या है, किसी को मुख्य करता है। काल को मुख्य करेंगे तो वो काल नए, और काल को छोड़कर पुरुषार्थ को करेंगे, निमित्त को मुख्य करेंगे तो अकाल है।
अभी यहाँ जो हमने काल नए और अकाल नए की बात पढ़ी, तो ये आम्रफल जो आम होता है वह उसके रेगुलर प्रोसेस में स्वभाव से पके, वो उसका कथन किया। वो काल की अपेक्षा से उसका कथन किया कि ऐसा ऐसा वो उस काल में वो पक गया। अब अकाल में क्या कहा कि हमने उसको पाल के नीचे दबा दिया या अन्य किसी प्रक्रिया से उसके ऊपर दवा छिड़की, जो भी हुआ तो उससे वो पक गया, तो वो निमित्त की अपेक्षा, तो उसको अकाल नए कहेंगे। ये बात ध्यान में रखिए, हम आगे पढ़ेंगे।
इन्हीं पांच समवाय में और दो नए लगते हैं। सैतालीस नए के नाम याद है? हाँ, दैव और पुरुष का, पुरुषकार नए और दैव नए। पुरुषार्थ को मुख्य करेंगे तो वो हो जाएगा, और निमित्त को मुख्य करेंगे तो दैव नए हो जाएगा। चलो आगे।
हाँ, पढ़े क्या पढ़ रहे हैं आप? यहाँ पर नियत दिया है वो। देखो अभी फिर से वो पढ़ता हूँ मैं। प्रवचन सार वहाँ श्रुता नैनो अधिकार से है ना, उसके नीचे मिल गया। ये प्रश्न का उत्तर है ना, सेकंड प्रश्न का उत्तर उसके नीचे। आत्मद्रव्य काल नये जेनी सिद्धि समर समय पर आधार रखे छे, यानी वो काल की अपेक्षा से उसका कथन किया है। उनाड़ा नए दिवस अनुसार पाकता आम्रपर्णी माफक, ये उसका उदाहरण दिया। अब नीचे कहते हैं अकाल नये की अपेक्षा से आत्मद्रव्य अकाल नये जेनी सिद्धि समय पर आधार रखती नहीं, यानी समय की बात नहीं कंसिडर की है। कृत्रिम गर्मी थी पकावामा आवता आम्रपर्णी माफक, ये उन्होंने उदाहरण दिया है। अभी उसका यहाँ उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। आई बनने कारणे ने अकारणे एकज कार्य प्रति पोत पोतानी विवक्षा रजू करे छे, ये बात ख्याल में आई? जेम कारणे मा कारणी विवक्षा छे तेम अकारणे तेज कार्य प्रति अन्य हेतु हो, कौन कौन सा? स्वभाव पुरुषार्थ नियत अने निमित्तनी विवक्षा दर्शावे छे। अहीं कारण अकाल नयनो एवो अर्थ क्या छे के पर्याय थवानी होय ते न थता आगी पाछी थाय के बीजी थाय। अकाल नो अर्थ एम छे के स्वभाव पुरुषार्थ नियत अने निमित्त ए बधा पण पर्याय थवाना काळे साथे ज छे, बाकी पर्याय थवा योग्य होय ते आगळ पाछळ थाय के बीजी थाय एवो तेनो अर्थ नथी। वास्तवमां प्रत्येक पर्याय पोताना नियत क्रम मां ज प्रकट थाय छे, अने ते काळे बाह्य अने अभ्यंतर सामग्रीनो सहज ज योग होय छे। एक पंडित अहीं आवेला, अहींनी वात सांभळी तेओ बहु खुशी थयेला। पोते बहु नरम माणस हता, तेमणे पंचाध्यायीनो हिंदीमां अनुवाद कर्यो छे। तेमा भूल रह गयेली ते बतावी, ते बोल्या अमारी भूल होय तो सुधारवो महाराज, सुधरावो महाराज। त्यां पंचाध्यायीमां तेमनी एम वात करी हती, करी छे के बुद्धिपूर्वकनो राग छठा गुणस्थाने होय छे अने अबुद्धिपूर्वकनो राग सातमा गुणस्थाने होय छे, परंतु आ कथन कीधु सदोष छे। छठा गुणस्थानमां ज ख्यालमां आवे एवो जे राग छे ते बुद्धिपूर्वक नो राग छे, अने तेज वक्ते एटले छठे गुण स्थाने ज ख्याल मां न आवे एवो राग छे ते अबुद्धिपूर्वक नो राग छे। सातमा गुण स्थान मां एकलो अबुद्धिपूर्वक नो राग होय छे, आम यथार्थ समझवू। जो समय सार गाता 308
ये बताना चाहते कि जिसको बुद्धिपूर्वक का राग है उसको अबुद्धिपूर्वक का भी है, और सातवें से आगे अबुद्धिपूर्वक वाला।
तो आप अपना कौन सा है, बुद्धिपूर्वक है क्या बुद्धिपूर्वक? अरे नीचे मत देख, ऊपर देख के बात कर। और चौथा गुणस्थानवर्ती जीव शुद्धोपयोग में है, हा? उसको कौन सा होगा बहन? बुद्धिपूर्वक। हाँ बुद्धिपूर्वक। आप क्या कहते हैं? दोनों 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 होंगे। अभी ये दोनों दोनों वाला है ना इधर, क्योंकि देखो उस समय चौथा गुणस्थानवर्ती शुद्धोपयोग में है, सुनना, उस समय जब शुद्धोपयोग में उस समय अबुद्धिपूर्वक का होगा, और इन जनरल चौथे गुणस्थान की पूरी बात करेंगे तो दोनों होंगे। ख्याल में? यानी ऐसा नहीं समझना, और जो मिथ्या दृष्टि है उसको अबुद्धिपूर्वक होगा ही नहीं, सॉरी बुद्धिपूर्वक ही होगा और अबुद्धिपूर्वक ही होगा, मैं गलत बोल रहा हूँ?
दोनों है,
दोनों ही होंगे। जब शुद्धोपयोग चल रहा है चौथे गुणस्थानवर्ती पंचम गुणस्थानवर्ती ऐसे अबुद्धिपूर्वक है वो, और इन जनरल ऐसा कह रहा हूं पंचम गुणस्थान है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूं, तो पांचवा गुणस्थान है ना चालू, वहां चौथा गुणस्थान है ना। देखो देखो तुम 100 साल के हो और तुमको 50वें साल में सम्यक दर्शन हुआ है, सुनो सुनो, तो 50वें साल में जब तुम शुद्धोपयोग में होंगे उस समय तुम्हें सिर्फ अबुद्धिपूर्वक राग ही चल रहा है उस समय, एक अंतर्मूर्त। अब आप जो कह रहे हैं कि उसके कारण उसको बंद हो रहे तीन कषाय चुकड़ी के, लेकिन जब अभी वो खाना खाता होगा या धंधा पानी करता होगा तो उस समय बुद्धिपूर्वक राग भी चल रहा है अबुद्धिपूर्वक राग भी चल रहा है। तो चौथे गुणस्थान वाले को हम कहेंगे तो दोनों है, लेकिन शुद्धोपयोग में रत है क्या पंचम गुणस्थानवर्ती है अबुद्धिपूर्वक। बात ख्याल में आई? हाँ जो समय सार का था 308 થી 311 टीका में आचार्य अमृतचंद्र देवे क्रमबद्ध विषय स्पष्ट बात करी छे। यहाँ कहूं छे के प्रथम तो जीव क्रमबद्ध एवा पोताना परिणामों थी उपज तो थको जीव छे अजीव नथी। एवी रीते अजीव पन क्रमबद्ध पोताना परिणामों थी उपज तो थको अजीव छे जीव नथी, क्योंकि वहां जो जीव द्रव्य है उसके जो गुण है वह भी चेतन में है, तो उनका जो कुछ परिणमन हो रहा है वह भी क्रम से हो रहा है, और उस समय वह जीव ही है, वो अजीव नहीं है। और अजीव जो है उसके जो गुण है उसके भी जो परिणमन हो रहा है उसके उसमें हो रहा है, उसमें जीव का कोई लेना देना नहीं है। मूल संस्कृत टीका में क्रम नियमित शब्द पड़ो छे, एटले द्रव्यमां प्रकट थता प्रत्येक परिणाम क्रम थी निश्चित तेना क्रममां थवाना काळे ज प्रकट थाय छे, आगा पाछा थता नथी। भाई आ तो त्रिलोकीना सर्वज्ञ देवनी वाणीमां झरेलू परम अमृत छे, एना रसपान विना बधु थोता छे शुं थाय। अत्यारे तो बधा पंडितोनुं भंतर ज निमित्ताधीन बुद्धिवाळुं छे, एम के निमित्तथी थाय पन परथी परनु परिणमन न थाय एवो अभ्यास ज नथी, पछी स्वानुभव तो क्यांथी थाय। आ वात सांभळीने पंडित देवकीनंदन बोलेला के संतो आगम चक्षु होय छे ए वात हवे बराबर समझाय छे। भाई गम्मे तेम करीने जीवनमां आ वात समझवा जेवी छे। वो
देवकीनंदन कोण हता? मिली भाई,
मिली को मालूम है आपने?
कौन जानते हैं आप?
कोई नहीं जानते, बता दो।
हाँ
अरे ये पंडित देवकीनंदन की बात है।
अभी तो बात की ना पंचाध्याय के हिंदी ट्रांसलेटर थे, उन्होंने टीका लिखी है पंचाध्याय के ऊपर। और दूसरी बात, पंडित गोपाल दास जी बरैया के ये सबसे यानी शिष्य, सर्वोत्तम शिष्य गोपाल दास जी बरैया के,
गोपाल दास जी बरैया जिन्होंने सिद्धांत प्रवेशिका अन्य भी जो है
यानी सिद्धांत दर्पण वगैरह बहुत सारे ग्रंथ लिखे है ना,
देवकी नंदन उनके शिष्य थे।
और जो पहले के जमाने में ऐसे अन्य मतियों के साथ तो बड़ी बड़ी सभाओं में वाद होते थे ना, तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है। और कारंजा गुरुकुल में वो कितने ही दिन तक वहां रहे भी थे वहां पढ़ाने के लिए, बहुत बड़ा कार्य किया है देवकी नंदन, बहुत अच्छे अभ्यासु थे। अभी तो बात आई थी ना उसमें हमारी क्या भूल है तो बता दो, तो उन्होंने उसको बताया, इसलिए उनको याद किया है कि आवाज सामरी ने क्या बताया कि संतो आगम चक्षु हो छे वात हवे बराबर समझाए छे, यानी आगम को भी कैसे पढ़ना उसका मर्म क्या है वो संतों के द्वारा ख्याल में आती है बात।
अभी पेज 50 पर यहाँ दूसरा पैराग्राफ है ना, लिखा है देखो, आवात सामरी ने पंडित देवकी नंदन बोलेला के, और ये पंडित देवकी नंदन ने पंचाध्याय के ऊपर टीका वगैरह मतलब ये किया है। और एक है ना देवकी नंदन और एक दो जनों की और हमने पढ़ी हो तीसरे की, दूसरे का नाम याद है कुछ?
वो मुख्तार जी ने लिखी होगी या जगन मोहन लाल जी,
जगन मोहन लाल, और तीसरे है वो हमने जिनकी पढ़ी थी, नाम याद है वो ब्लू
सरनाराम जी,
सरनाराम जी है। तो वहाँ स्वामी जी याद करते हैं, आवाज सामरी ने पंडित देवकी नंदन जी बोलेला के संतो आगम चक्षु होई छे ए बात हवे बराबर समझाए छे, यानी ये बात जब तक वो भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, गुरुदेव ने जब बात बताई तब उनको भी वह बात का एहसास हुआ। भाई गम्मे ते करीने जीवन में आ बात समझवा जेवी छे, हो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट करवानी तारी ताकत छे, माटे आ मने न समझा एवं शल्य छोड़ी ने अभ्यास कर, जरूर तने स्वानुभव प्रकट थशे। समयसार ना एक कलश में कहूं छे के एक चैतन्य मात्र वस्तु ने पोते निश्चल लीन थई देख, एवो छ महीना अभ्यास कर, अने जो जो के एम करवाती पोतन जो जो तपास के एम करवाती पोताना हृदय सरोवर मा जेनु तेज प्रताप प्रकाश उद्गलती भिन्न छे एवा आत्मानी प्राप्ति नथी थती के थाय छे। भाई प्राप्ति थाय ज एवी आ वात छे, पोते जागतो उभो छे ते क्या जाए। तो हमारे बेनश्री बोले जागतो जी उभो छे ते क्या जाए, यही बात है। प्राप्त थाय आई छ महीना नो अभ्यास कयो तेथी एम न समझवू के एटलो वक्त लागे, तेनु थवू तो अंतर मूरज मा ज छे, परंतु कोई मंद रुचि वालो होय तो तेना माटे कहूं छे के छ महीना आ तत्वज्ञान नो स्व लक्ष्य पूर्वक अभ्यास कर, तने अनुभव थशे ज थशे, अंतरनी रुचि वड़े वास्तविक तत्वज्ञान नो अभ्यास करे तेने आत्मानुभूति थाय ज एम वात छे। पण अरे रड़वा कमावा पाछळ मजूरनी जेम आखी जिंदगी वेड़फी नाखे, नौकरी वाला तो 55 वर्षनी उमरे निवृत्त छूटा थाय, पण आ तो धंधानी ममता अड़े 80-90 वर्षनी उमर थाय छता त्यांथी निवृत्त थई आवु तत्व समझवा फुर्सत न ले तो शू थाय। भाई जिंदगी हारी जाईश हो, मरी ने क्या एक संसार समुद्र मा खोवाई जाईश। हाँ अभी अभी आपका प्रश्न ऐसा है, ये देवकी नंदन जी जो हुए हैं वो अभी अभी थे क्या? हाँ अभी थे, अभी अभी उनका देहांत हुआ है स्वामी जी के पहले कुछ, क्योंकि स्वामी जी स्वयं ना कितना 80-92 साल तक तो वो स्वयं जी है। और ये गोपालदास जी बरिया, उनका जन्म कुछ 150 साल पहले हुआ था, वो भी कुछ 100 साल 50 साल 60 साल 70 साल जीवे होंगे, उनके शिष्य उसके आगे। समय सारणी पांचवी गाथा में आचार्य देवे कहूं के ते एकत्व विभक्त आत्मा ने हूँ आत्मा ना निज वैभव वड़े देखाड़ू छू, जो हूँ देखाड़ू तो प्रमाण एटले स्वीकार करवू, प्रमाण करव एटले शू के जे एकत्व विभक्त आत्मा ने दर्शावू छू तेने स्वयमेव पोताना अनुभव थी प्रत्यक्ष थी परीक्षा करी प्रमाण करवू, एकली हा पाड़ एम नहीं पन हे शिष्य पोताना स्वसंवेदन प्रत्यक्ष थी प्रमाण कर एम केवू छे, वस्तु पोते आत्मा स्वानुभव प्रत्यक्ष न थाय एम वात ज नथी। अहो दिगंबर संतोनी आ रामबान वाणी छे समझाणू काय। अरे भाई जीवोनी दया पाड़ो, दान आपो ने भक्ति करो तो धर्म थाय, एवी वात तो लौकिक मां सामान्य लोको पन करे छे। घणा वर्षो पहला अमारा गाम मां एवो रिवाज हतो के जैनो ना परिशन आवे एटले गांची, गांची एटले वो कुमार की बट्टी होती है ना, निंबाड़ा का अर्थ वो
घाणी चलाने वाले
गांची, गांची याने तेली बरोबर। कुमार वगैरे लोको एक मास सुधी पोतानो धंधो बंद रखता, निंबाड़ा याने वो भट्टी, घाणी वगैरे चालू न रखता, पण एथी शू ए बधाथी काई धर्म थोड़ो थाय, राग मंद होय तो पुण्य बंद थाय बस। धर्म वस्तु तो कोई अलौकिक चीज छे बापू, जगतना प्राणियों ने धर्मना स्वरूपनी खबर नथी, स्वस्वरूप मां सन्मुख थई त्याज रमू तेमाज लीन स्थिर थमू, ते वीतरागी जैन धर्म छे आवी दशा। थता धर्मी ने दया दान नो राग आवे छे, पन तेने ते जानवा लायक छे बस, तेनी दृष्टि तो निरंतर अखंड एक नित्य प्रतापंत निज न्याय पर ज होय छे, अने त्याज स्थित थवाते प्रवृत्त थाय छे। ल्यो आवो धर्म जो निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार ने क्रमबद्ध ए पांच वात आई थी खास बाहर आवी छे, आई थी अने सोनगढ़ छे ऐसा कहना छे, ते खास समझवा जेवी छे, केटलाक समझा विना ज तेनो विरोध करे छे। आई नी वात सांभळी पंडित देवकीनंद बोल्या हता के अहो क्रमबद्ध नी आवी वात अमे क्यांय सांभळी नथी, अमारा बधा पंडितों भणतर ज निमित्ताधीन दृष्टिवाड़ू छे, प्रत्येक द्रव्य नी पर्याय स्वतंत्रपणे पोताना उपादान थी प्रकट थाय छे, एवी वात अमारा अभ्यास मां कदी आवी नथी, अनुभव थवानी वात तो क्यांय दूर रही गई। देखो कितने नरम दिल आदमी होना चाहिए वह। अरे भाई भगवाने आ विश्व मां छ द्रव्यो जोया छे, तेमा एक जीव अने बाकीना पांच द्रव्यो पुद्गल धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश अने काल ते अजीव छे। आ सर्व जीव अजीव द्रव्यो प्रति समय पोतपोताना क्रमबद्ध परिणामोथी निरंतर उपजे छे, कोई द्रव्य कोई अन्य द्रव्यना परिणाम ने उपजावी एवी वस्तु स्थिति ज नथी। गाथा 308-311 ટીકામાં વાત આચાર્ય દેવે પ્રસિદ્ધ કરી છે, આવી વસ્તુ વ્યવસ્થા સ્વીકારીને જે અંતર્મુખ થઈ અંતર્મુખ દ્રષ્ટિ કરે છે તેને ક્રમબદ્ધનો સાચો નિર્ણય થાય છે, અને તેને ક્રમબદ્ધ નિર્મળ આનંદ આદિ પર્યાયની ધારા શરૂ થાય છે। ત્યાં ક્યાં કહેતે કે જીસને એ ક્રમબદ્ધ પર્યાય રૂપી જો વસ્તુ વ્યવસ્થા કા સ્વીકાર કિયા હૈ उसको सम्यक दर्शन होगा ही होगा ऐसा बताते। बाकी તો જગતના જીવો બિચારા દુઃખમાં પીલાય છે. અરે ઘાણીમાં તળ પીલાય તેમ રાગ દ્વેષની ઘાણીમાં તેઓ પીલાય છે. અનંત પ્રભુતામાં પોતાના પ્રભુને આત્માને ઓળખ્યા વિના બિચારા શું કરે, ક્યાં જાય, દુઃખમાં ડૂબી મરે છે. કોઈક વિરલ જીવ અંતર સ્વભાવ સન્મુખનો પુરુષાર્થ કરે છે, તે અલ્પકાળમાં કેવળ જ્ઞાન લઈને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. સજ્જાયમાં આવે છે ને કે સહજાનંદી રે આત્મા, સૂતો કઈ નિશ્ચિંત રે, મોહતણા રે રણિયા ભમે, જાગ જાગ મતિવંત રે, લૂટે જગતના જંતરે, વિરલા કોઈ ઉગરંત રે. ક્યા કહેતે હૈ હા સજ્જાય, અને યે ગાથાએં રહેતી હૈ વો આપકે ઇસમે હોતી હૈ. ચાલો મેં કહી ये स्तवन आदि होते हैं 24 तीर्थंकरों के, उसमें ये बातें आती है, उसको सज्जाय माला कहते हैं. इन्होंने सज्जाय कहा. मोह तणारे रणिया भमे, यानी ये रैया यानी वो जो ऐसे अरे प्रभु आ मोह राग द्वेषादी रणिया तारा माथे भमे छे, ने तू पोताना सहजानंदी स्वरूप ने भूली प्रमादी थई सूतो छे. जाग रे जागनाथ, आ जगतना प्राणियों तने लूटे छे, आ भैरा छोकरा वगैरे कुटुंबीजनों पोतानी आजीविका हेतु तारा आनंद ने लूटे छे. નિયમસારમાં આવે છે કે આ સ્ત્રી પુત્ર આદિ પરિજન પોતાની આજીવિકા માટે તને દૂતારાઓની ટોળી મળી છે. હવે આવી સ્થિતિમાં કોઈ વિરલ જીવ મોહ મુક્ત થઈ પોતાના ત્રિકાળી શુદ્ધ સહજાનંદ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપની સંભાળ કરે છે, તે ઉઘરી જાય છે, અર્થાત પોતાનું કલ્યાણ કરી લે છે. અંદર પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિરાજે છે તેને ભૂલીને તું બહાર ફાફા મારે છે. બારમાં ક્યાં તારા પ્રભુતાને આનંદ છે? આહા અનંત આનંદ, અનંત ગુણની પ્રભુતાના સત્વથી ભરેલો તું પ્રભુ છો. આહા આવા નિજ સ્વરૂપનો મહિમા લાવી અંતર્મુખ થા, તેમ કરતા જ અખંડિત તેજ વડે તારો આત્મા પ્રભુતાથી પર્યાયમાં શોભી ઉઠશે. આ સિવાય બારમાં ક્યાંય તારી પ્રભુતા પ્રકટ થાય એમ છે નહીં, સમજાણું કાંઈ. લ્યો આ પ્રમાણે અહીં પ્રભુત્વ શક્તિનું વર્ણન પૂરું થયું. વિભુત્વ શક્તિ
દેખો, યહાં આઠમી વિભક્ત શક્તિ અભી વિભુત્વ શક્તિ પડેંગે. સર્વ ભાવોમાં વ્યાપક એવા એક ભાવરૂપ વિભુત્વ શક્તિ, જેમ કે જ્ઞાનરૂપી એક ભાવ સર્વ ભાવોમાં વ્યાપે છે, એને સભી ગુણો સભી ગુણ જ ઉસકે પૂરે ભાવ. હા જૈસે હમને કહે એક કા રૂપ સભી મેં હૈ, તો એક સભી મેં વ્યાપ્ત હૈ.
ક્યા પૂછતે હૈ?
રૂપ મેં ઓર ઇસમેં કોઈ યાને વો વ્યાપક હૈ પૂરી, યાને એક એક શબ્દ શક્તિ પૂરે આત્મા મેં વ્યાપ્ત હૈ, પૂરે આત્મા મેં અને પૂરે સભી ગુણો મેં. હા સભી શક્તિ સભી મેં વ્યાપક હૈ, ક્યુંકિ પૂરા આત્મા મેં હૈ ને. દ્રવ્ય એક એક શક્તિ પૂરે દ્રવ્ય મેં વ્યાપક હૈ કે નહીં હૈ? તો દ્રવ્ય ક્યાં હૈ? અનંત ગુણો કા સમૂહ તો હૈ. હા યાને જો અન્ય મતી સમજતા એક ઈશ્વર હૈ સબ મેં વ્યાપક હૈ, એસા કુછ નહીં હૈ. અપની એક એક શક્તિ અપને મેં પૂર્ણ રૂપ સે વ્યાપક હૈ, ઇસલિયે અનંત ગુણ અન્ય અનંત ભાવોમાં એસા લ્યા, ક્યુંકિ પૂરે દ્રવ્ય મેં વ્યાપક હૈ, ઉસી કા અર્થ સભી ગુણો મેં વ્યાપક હૈ.
देखो हमने बार बार देखा था, कोई भी शक्ति पे हमने बात देखी थी, ये द्रव्य में व्यापक है, गुण में व्यापक है और पर्याय में व्यापक है, एक बात। दूसरी बात ये बताई थी कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, लेकिन एक गुण का रूप दूसरे गुण में होता है। तो यहाँ कहते जो भाव शक्ति है, विभुत्व शक्ति, वह विभुत्व शक्ति अन्य प्रत्येक गुण में है और उनके पर्याय में तो है ही है और द्रव्य में भी है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं,
एक एक शक्ति के लिए एक एक भाव कहा यहाँ पर, तो अन्य अनंत शक्तियों में व्यापक है, इसलिए लिखा अन्य सर्व भावों में व्यापक एवं एक भाव रूप विभुक्त शक्ति। पढ़ेंगे वो ख्याल आएगा आपको। आ शक्ति नो अधिकार चाले छे, तेमा अहीं आ आठमी विभुत्व शक्ति नु वर्णन छे। हाँ हाँ, आत्मा शुद्ध चैतन्यमय पदार्थ छे, ते कर्म अने शरीर थी सदाय भिन्न चीज छे। ये तो स्वतंत्र वस्तु है ना, द्रव्य है, अन्य सभी द्रव्यों से पूर्ण भिन्न है, तो हमने उसको कर्म से और शरीर से सहित माना है। तो ये कहते सदाय भिन्न चीज से, मुक्त होने के बाद की बात नहीं है, अभी संसारी अवस्था में एक क्षेत्रावकाह रूप से रहते हुए भी वह भिन्न चीज है। वही अंदर जे पुण्य पाप ना विकल्प उत्पन्न थाय छे, तेनाथी पण आत्मा वास्तव में भिन्न वस्तु छे। हमेशा वो स्फटिक का उदाहरण देते हैं, जैसे स्फटिक के बाजू में कोई अन्य कलर वाली कोई चीज रखो, कोई फूल है, कोई डॉट है, कुछ है, तो उसकी पूरी उसकी झांक वो पूरी स्फटिक में आती, तो स्फटिक ही पूरा नीला या लाल दिखाई देता है, परंतु उस समय भी स्फटिक की निर्मलता तो वहां भी विद्यमान है और उस जो रंग दिख रहा है उससे वो भिन्न है। ऐसे ही राग द्वेष के परिणाम होते हुए भी उस समय भी उसकी बात चलते है, तेनाती पण आत्मा वास्तव में भिन्न वस्तु छे। केम के ते विकल्पो त्रिकाणी चैतन्य वस्तु में प्रसरता नहीं, ये व्यापक की बात है। तो कौन प्रसरे छे त्रिकाणी वस्तु में, तो सभी गुण उसमें प्रसरे है, एक एक गुण सभी अनंत गुणों में प्रसरे हुए व्याप्त हुए है, परंतु पोतानी जे अनंत शक्तियों छे तेनाथी आत्मा अभिन्न छे एक छे, क्योंकि अनंत शक्ति स्वरूप ही तो आत्मा है, तो उससे आत्मा अभिन्न है, नित्य तादात्म्य संबंध जिसको हमने कहा। केम के सर्व अनंत शक्तियों पूरी आत्म वस्तु में अभेदपणे व्यापक छे, ये अभेदपणे व्यापक है, क्योंकि सभी वो कोई ऐसे बिखरी हुए नहीं है कोई शक्तियां, उनका अभेद पिंड ही तो द्रव्य है, इसलिए अभेदपणे व्यापक कहा। ये भेद तो हमने समझाने के लिए, समझने के लिए उसके भेद करके समझाया जाता है, परंतु ऐसे कोई वस्तु भेद रूप नहीं है, वस्तु तो अभेद है, सभी अनंत शक्तियों अभेद रूप से है वहां पर विद्यमान। वो अभेदता को हम अगर भूल जाएंगे तो अनुभव नहीं होगा। हम सीखते हैं तो भेद करके सीखते हैं, परंतु अभेद को कभी ख्याल बाहर नहीं करना, अभेद को प्रतीति में लेते हुए भेद की चर्चा करें तो ठीक है, क्योंकि वस्तु एक है ना, एक अखंड वस्तु है, वो वस्तु कैसी है तो उसके इतने शक्तियों का वर्णन किया। हाँ, हो सकता है कि किसी एक शक्ति को मुख्य करके हम पूरे वस्तु को पकड़े, परंतु एक शक्ति को मुख्य किया तो भी गौण रूप से अनंत वहां पर विद्यमान है, क्योंकि एक एक शक्ति अनंत शक्तियों में व्यापक है, पूरे आत्मा में व्यापक है, ये बात लेनी है। क्या कहते हैं, अभिन्न छे एक छे, केम के सर्व अनंत शक्तियों पूरी आत्म वस्तु में अभेदपणे व्यापक छे, ये व्यापक की बात है ना, उसमें सभी अनंतों का अनंत शक्तियों का अभेद पिंड ही तो द्रव्य है। आ शक्तियों माथी अहीं विभुत्व शक्ति नु वर्णन कर्यु छे। केवी छे विभुत्व शक्ति, तो कहे छे सर्व भावों मां व्यापक एवा एक भाव रूप विभुत्व शक्ति। भाव एटले शुं, के आत्म वस्तु मां जे ज्ञान दर्शन चिति जीवत्व प्रभुत्व आदि शक्तियों छे, अभी जितनी हो चुकी उनके नाम लिए, वैसे तो 47 का यहाँ वर्णन है, है तो अनंत। तेने अही भाव कहेल छे, ये भाव शब्द भी अनेक अर्थ में आता है। हाँ लिखा है, हाँ भाव शब्द चार अर्थ में कहवाये छे, द्रव्य ने भाव कहे छे, सुनाए कभी? मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, तो केवल वो ज्ञान गुण की बात नहीं, पूरा अखंड द्रव्य की बात है वहाँ, ज्ञायक भाव कहते तब। गुण ने भाव कहे छे, हम देखे तो ये स्वभाव है। पर्याय ने भाव कहे छे, पर्याय को भी वो द्रव्य का भाव ही कहने में आता है उसको भी। और राग ने विकारी पर्याय ने पण भाव कहे छे। ये चारों अर्थ में जहाँ जो योग्य हो समझना। तेमा अही अही अभी इस जो वस्तु वो विषय चल रहा है वर्तमान में विभुत्व शक्ति में, यहाँ जो सर्व भावों में व्यापक एवी जो एक भाव रूप जो बात बताई है, तो यहाँ भाव शब्द से त्रिकाणी शक्ति ने भाव कहेल छे। मतलब के सर्व अनंत शक्तियों में व्यापक एवं एक भाव रूप विभुत्व शक्ति छे, समझानु काय? आत्मद्रव्य में जे विभुत्व शक्ति छे, ते द्रव्यना सर्व भावों में व्यापक एवं एक भाव स्वरूप छे। अर्थात द्रव्यना सर्व अनंत भावों में व्यापक छता विभुत्व शक्ति अनंत भाव रूप थई जती नथी। क्या कहते हैं? वो एक ही शक्ति है, वो उसका एक ही रहेगी, अनंत में व्यापक होते हुए भी वो एक भाव रूप है।
यहाँ जो लिखा है ना कि द्रव्यना सर्व भावों में, तो यहाँ गुण में लेना।
हाँ ऊपर बात आई ना शक्ति, त्रिकाली शक्ति को ही यहाँ भाव कहा, गुण कहा।
तो कहते आत्म द्रव्यनम द्रव्य में जो विविध शक्ति से ते द्रव्यना सर्व भावों में एटले गुणों में व्यापक एवं एक भाव स्वरूप है, यानी एक भाव स्वरूप है वो सर्व में व्याप्त है। अर्थात द्रव्यना सर्व अनंत भावों में एटले गुणों में व्यापक छता जे विविध शक्ति है ते अनंत भाव रूप थई जती नथी, सदा ते एक भाव रूप ज रहे छे, यानी उसका जैसा स्वभाव है उस रूप ही रहती है।
यानी अनंत में व्यापक होने पर भी वो अनंत रूप नहीं होती, वो एक ही रूप ही रहती है। देखो एक पने रहीने अनंत गुण स्वभाव मां व्यापे एवं आत्मानु विभुत्व छे। ये विभुत्व आत्मा का ही है। गुण क्या होते हैं, आत्मा कैसा है, तो उसको समझाने के लिए वहां जो कोई वर्णन करेंगे तो उसको हम शक्ति कहेंगे, गुण कहेंगे। तो आत्मा में ही ऐसी विशेषता है। कैसी? एक पने रहीने अनंत गुण स्वभाव में व्यापे, ऐसे उसका गुण है, ऐसे उसकी शक्ति है, आत्मा की ही शक्ति है। वहीं ज्ञान नो दृष्टांत आप्यु छे ने कि ज्ञान रूपी एक भाव सर्व भावों में व्यापे छे। जैसे आत्मा चैतन्य है, ज्ञान रूप है, तो ये सभी उसके जो अनंत गुण है वो ज्ञान में है कि नहीं है? हाँ, तो ये ज्ञान जो शक्ति है वो सभी में व्यापक है। तेवी रीते एक भाव रूप विभुत्व, ये तो दृष्टांत दिया, तो एक भाव रूप जो विभुत्व है सर्व भावों में ने आत्मद्रव्य में व्यापे छे, आ रीते विभुत्व स्वभाव वड़े आत्मा विभु अर्थात सर्वव्यापक छे। सर्वव्यापक है ने वो बाहर का सर्वव्यापक भगवान वो नहीं समझना, आत्मा अपने अनंत गुणों में विभुत्व शक्ति के कारण पूरा व्याप है, ने आत्मा ना प्रत्येक गुण पण विभु अर्थात सर्वव्यापक छे। पहले में आत्मा की शक्ति है ना, सर्व भावों में व्याप्त हो ऐसे एक भाव रूप ये आत्मा है, तो उसके एक एक गुण भी सर्व भावों में व्याप्त है, ऐसा लेना। अन्य मत मां आत्मा आखा विश्व मां सर्व व्यापक छे एम मानवामां आवे छे। ते वो आकाश मां इतले लोकालोक मां सर्वत्र भगवानों एक ब्रह्मनो वास छे एम माने छे। भाई एवी आत्म वस्तु नथी, અહીં તો પોતાના સર્વ અનંતા ગુણ પર્યાયોમાં વ્યાપક એવો આત્મા વિભુ અર્થાત સર્વવ્યાપક છે. આત્મા કૈસા હૈ? અપને અનંત ગુણ પર્યાયો મેં વ્યાપ્ત હૈ, ઉસમે વો વસતા હૈ, ઇસલિયે ઉસકો વસ્તુ કહા, વ્યાપ્ત હૈ ઇસલિયે ઉસકો વિભુ કહા. તો આત્મા વિભુ અર્થાત સર્વવ્યાપક છે એમ વાત છે. यानी वो अपने अनंत गुणों में व्याप्त है और अपने अनंत पर्याय में व्याप्त है. क्योंकि द्रव्य की परिभाषा हमने क्या देखी, गुण पर्याय व द्रव्य. अनंत गुण तो सहभावी है परंतु पर्याय तो क्रमवर्ती है ना, एक के पश्चिम एक. तो ये सभी अनंत गुणों का और अनंत पर्यायों का समुदाय वह द्रव्य है. इसलिए कहे आत्मा एक भाव रूप है जो अपने अनंत गुणों में और अपने अनंत पर्याय में व्याप्त है. ये विभुत्व शक्ति बताती है. प्रत्येक आत्मवस्तु पोताना स्वरूप ने छोड़ीने पोताना असंख्य प्रदेशी क्षेत्रनी बाहर क्या ही अन्य द्रव्य में व्याप्त नहीं. प्रदेशों की अपेक्षा लेंगे तो अपने प्रदेशों में व्याप्त है, परंतु प्रदेश में क्या है, वो तो गुण पर्याय से ही है ना, तो भाव तो उसमें होगा ही. तो यह अनंत गुणों में व्याप्त है ऐसा कहा, अनंत पर्याय में व्याप्त है ऐसा कहा. अब वो बाहर ना सर्व परद्रव्यों की भिन्न, ये बाहर में कहीं भी नहीं व्याप्ता है परंतु अपने में तो सर्वत्र अपने सभी गुण पर्याय में व्याप्त है. ऐसे एक भाव रूप ये जो आत्मा की जो अभेदता है उसको यहां बताते हैं. अने अंदर सर्व अनंत गुण पर्यायों में व्यापक एवं आत्मा विभू स्वभावी छे.
देखो इन शॉर्ट यहाँ हम ऐसा देखेंगे विभू का या विभुत्व का यानी विभूपना, तो विभू का अर्थ व्यापकपना. तो व्यापक कहाँ कहाँ है, तो कहते हैं द्रव्य में है, गुण में है, पर्याय में है. अब आगे जाके बोलेंगे कि ऐसा व्यापकपना होते हुए भी ये अन्य मति की क्या कहते हैं उनका विरोध करने कहेंगे, उनको नलीफाई करने के लिए जैसा उनकी मान्यता है कि एक ही भगवान जो कोई उनका ईश्वर सर्व जगह में व्याप्त है, तो वह क्या कह रहे हैं सर्व द्रव्यों में यानी अनेक अनंत जीवों में अनंत अनंत पुद्गलों में धर्म अधर्म सब में वो व्याप्त है पूरे. वो तो कहते चराचर में वो व्याप्त है. तो अभी यहाँ जैन दर्शन में क्या बात बताई जा रही है, ये विभुत्व नाम का जो गुण है वह अपने ही द्रव्य में जो रहने वाले अनेक गुण है, अनंत गुण है, उनमें वो व्यापक है, उनकी पर्याय में व्यापक है, लेकिन पर द्रव्य में वो किसी को व्याप्ता नहीं है. ये मूल बात यहाँ इसलिए कहा कि वह तो जो क्या कहते हैं यही उसका विभुत्वपना है, विभूपना विभुत्व है. ये लिखा ना आखिर की लाइन में, अवो बाहरना सर्व पर द्रव्योती भिन्न अने अंदर सर्व अनंत गुण पर्यायों में व्यापक. देखो यहां से ये जो पहली लाइन है ना उसने थर्ड लाइन में लिखा, देखो आ रीते विभुत्व स्वभाव वड़े आत्मा विभु अर्थात सर्व व्यापक छे. ये उसकी मूल बात है. और वह सर्व व्यापक किसमें कह रहे हैं, आत्मा ना प्रत्येक गुण पन विभु अर्थात सर्वव्यापक छे. यानी देखो और एक एक्स्ट्रा बात बताई है, यह विभुत्व गुण अन्य में व्यापक है ही है, लेकिन जो अन्य गुण है प्रत्येक गुण है ते पन विभु अर्थात सर्वव्यापक छे. हाँ उसका रूप होने के कारण वो भी अन्य में व्यापक है ना, यानी जिसको हम कहते हैं ना एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसा इंटरकनेक्शन है अंदर. बापा समझाई छे? हाँ तो उसका गुण अन्य रूप में है, तो अन्य गुण भी अन्य गुणों में व्यापक है. तो हाँ ये बताना चाहते हैं परदर. हाँ इसलिए उन्होंने हाँ जिसको सामान्य कहेंगे. हाँ एक दिन बैठ के अपन उसका हिसाब लगाएंगे। अभी तो अपनी आठवीं नवमी चल रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति और वीर्य, छठी आ गई ना। हाँ, विभुत्व शक्ति जो है, प्रभुत्व शक्ति है। तो हर एक देखो, अभी ऐसा बताया हो कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो स्वभावेश्वर है और पुद्गल वो जड़ेश्वर है, और जो मिथ्या दृष्टि है वो विभावेश्वर है। लिया, यानी ईश्वर शक्ति में आएगी आगे जाके। ऐसा हम बैठेंगे और एक एक को इधर के उधर करेंगे तो वैसे ही है। नहीं नहीं निश्चय से अनंत गुण है भाई। हाँ बराबर, अनंत गुणों में देखो, पहले एक नक्की करो, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है। हाँ, और उन अनंत गुण यानी कितने अनंत के अनंत प्रकार है हमने देखे थे ना। तो अनंत गुणों में किसी भी विशिष्ट द्रव्य के, हम जीव द्रव्य की बात करेंगे, तो अनंत गुणों में अनंत गुण तो सामान्य है और अनंत गुण तो विशेष है। अभी उसमें से अधिक मेरे हिसाब से तो 60-65-100 भी कर लो तो उससे अधिक हम नहीं जानते हैं। अब जो जानते हैं उसमें बहुत सारे, यहाँ जो जीव की विशेषता बताई है उनमें भी कुछ सामान्य रूप से कहे जाके हर द्रव्य में पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ बात ऐसी है कि जो समय सार में जहाँ जहाँ ये शक्तियाँ छिपी हुई थी वह अमृत चंद्राचार्य ने उसमें से बाहर निकाली। क्योंकि क्यों निकाली साहब, काय को हमारे माथे को तकलीफ दे रहे हो भाई। जब उन्होंने कहा कि आत्मा ही ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा में ज्ञान है, अन्य कोई नहीं है, ऐसा नहीं समझना। अन्य भी है तो वो अन्य क्या क्या है तो वो शास्त्र में ही लिखे, आपके नजर में नहीं आते तो हम क्या करेंगे। इसलिए स्वामी जी ने बहुत बार ऐसा भी बताया, आ गाथा माती आ वात काडीच। चलो अभी बाकी की बात हम बाद में करेंगे। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, आनंद समय जाएगा ना सब बातें करते। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकर्ण मो सदा देत हो।